एचडी स्मार्ट कास्ट।
यू आर लिसनिंग टू एन एचडी स्मार्ट कास्ट ओरिजिनल।
देवी सती के दोनों कर्णों यानी कानों का निपात भारत के दक्षिण किसान कर्नाटका प्रदेश में हुआ। ऐसी महान घटना से कर्ण आटक को अपना नाम कर्नाटक मिला, जो ब्रिटिश राज्य के बाद कर्नाटका हो गया। इससे पहले इसे कर्ण आटक ही बुलाया जाता था।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का एचटी स्मार्ट कास्ट की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के मैसूर शहर में। मैसूर, जो पल्लवों, राष्ट्रकूटों, चोला वंशियों और चालुक्यों की विजय भूमि रही। मैसूर जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा राम के वंशजों ने और महाराजा विक्रमादित्य ने शासन किया, जिनकी मंदिर व नगर निर्माण की कला उत्कृष्ट थी। इसका एक उदाहरण हम महालक्ष्मी शक्ति पीठ की जानकारी के साथ पहले ही देख चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी मैसूर की ऊंची पहाड़ी पर देवी ने महिषासुर का वध किया था, उसी से इसका नाम महिसूरु पड़ा और अंग्रेजों के आने के बाद मैसूर कहलाने लगा। इसी मैसूर में चामुंडी नामक पहाड़ियों पर स्थित है चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ, जहां देवी सती के दोनों कानों का निपात हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां माता के बाल गिरे थे। यहां की शक्ति है चामुंडा और यहां के भैरव को भीष्म या भूतनाथ कहा जाता है। देवी के चामुंडा रूप की महिमा का वर्णन दुर्गा सप्तशती के छठे और सातवें अध्याय में आता है। दो दैत्यों शुंभ और निशुंभ ने देवी दुर्गा के रूप पर मुग्ध होकर उनसे विवाह की याचना की। मां के धिक्कारे जाने पर उन्होंने अपने योद्धाओं धूम्रलोचन एवं रक्तबीज को भेजा, जिनका वध क्रमशः देवी दुर्गा के रूप चंडिका और देवी काली द्वारा हुआ, जब उन्होंने अपने वीर सेनापतियों चंड और मुंड को भेजा। तब काली देवी ने रणभूमि में चंड और मुंड नामक संसार और स्वर्ग को प्रताड़ित करने वाले राक्षसों का स्वयं वध किया और उनके कटे हुए शीश अपने दोनों हाथों में लेकर वो चंडिका देवी के पास गईं। फिर प्रचंड अट्टाहस करते हुए श्लोक 24 में उनसे बोली, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है, अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम स्वयं करना। फिर कल्याणमयी चंडिका देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और इसी कारण वो चामुंडा कहलाएं। कहते हैं इसी स्थान पर देवी ने चंड और मुंड का वध किया था, इसीलिए इसे चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर देवी ने महिषासुर का भी वध किया था, इसीलिए इस स्थान पर महिषासुर की एक बहुत विशाल प्रतिमा है। दुर्गा सप्तशती में ही भगवान शिव ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का रहस्य बताया। इस स्त्रोत का मुख्य मंत्र देवी के चामुंडा रूप को ही समर्पित है। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं ह्रूं क्लीं जूं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। इस मंत्र का महत्व बताते हुए भगवान शिव कह रहे हैं कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभ नोचाट्य आदिकम गोपनीयम पाठ मात्रेन संसिद्धयेत कुंजिका स्त्रोतम उत्तमम। इस महान गोपनीय मंत्र के जाप से मारणम मोहनम वश्यम जैसी समस्त सिद्धियाँ व्यक्ति सरलता से प्राप्त कर लेता है। मारणम मोहनम वश्यम का अर्थ है अपने अहंकार को मारना, अपने मन को वश में करना और समस्त शुभता को अपनी ओर आकर्षित करना। इसका व्यापक और विस्तृत अर्थ मैं सुगंधा सुनंदा शक्ति पीठ के एपिसोड में भी बता चुकी हूँ। आप इसी पॉडकास्ट के एपिसोड 10 में उसे समझ सकते हैं। यहाँ बस इतना समझें कि ईश्वर कभी भी किसी का अहित करने के लिए कोई भी विद्या प्रतिपादित नहीं करेंगे और जो इन विद्याओं का दुरुपयोग करेगा उसका अंत निश्चित ही देवी अनेक असुरों की तरह करेंगी। चामुंडेश्वरी देवी युद्ध की देवी है और धरती पर आई अकाल महामारी आदि विपदाओं और अन्य आपदाओं से हमारी रक्षा करती हैं। माँ चामुंडेश्वरी को कर्नाटक के लोग नाडा देवी के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है राज्य की देवी। सैकड़ों वर्षों से माँ चामुंडेश्वरी को मैसूर के राजाओं के द्वारा अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता आ रहा है। आज ये मंदिर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर का उल्लेख पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण में 8 पहाड़ियों से घिरे एक पवित्र स्थान का उल्लेख है, जिसे त्रिमूता क्षेत्र कहा जाता है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर स्थित है। जिस स्थान पर यह मंदिर बना है उसे प्राचीन काल में क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था और आज भी दक्षिण भारत में इस शक्ति पीठ को क्रौंच पीठ के नाम से भी जानते हैं। आइए अब मैं आपको 7 मंजिलों वाले करीब 40 मीटर ऊंचाई वाले द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में साक्षात खड़े इस अद्भुत मंदिर के विषय में विस्तार से बताती हूँ। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से 150 किलोमीटर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है मैसूर और मैसूर से 13 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडी पहाड़ी पर स्थित है माँ चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 3489 फुट है। इतनी ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण कर देना ही अपने आप में एक आश्चर्य है। चामुंडी देवी को नाडा देवी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के महाराजाओं की ये कुल देवी हैं। मैसूर से यात्रा के दौरान ये दूर से ही दिखाई देता है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक मनोरम स्थान है। यात्रा के दौरान पहाड़ियों पर मार्ग में तरह तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने से मन रोमांचित हो उठता है। पहाड़ी के नीचे ही अपना वाहन छोड़ देते हैं, वहीं जूते चप्पल जमा करने का स्थान है। पहाड़ी पर मंदिर तक पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियों का ट्रैक है। ये ट्रैक बहुत ही सुंदर और आसान है। रास्ते पर खाने पीने के स्टॉल्स हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मार्ग में 700वीं सीढ़ी पर एक छोटा शिव मंदिर है और उसके सामने ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी भगवान नंदी की एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 15 फीट और लंबाई लगभग 24 फीट है। नंदी की प्रतिमा पर की गई नक्काशी अद्भुत है। ये देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मार्ग में राक्षस महिषासुर की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसके एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में विशाल सर्प है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला के अनुसार किया गया है। यहाँ ऊंचाई से मैसूर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस मंदिर की संरचना चतुर्भुज आकार में की गई है। इसमें मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, नवरंग हॉल, अंतराला मंडप और गर्भगृह शामिल है। मंदिर के बाहर से ही प्रसाद लेकर मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। मंदिर का विशेष आकर्षण इसका प्रवेश द्वार है, जिस पर 7 मंजिलों वाला पिरामिड नुमा गोपुरम बनाया गया है, जिस पर 7 स्वर्ण कलश बने हुए हैं। गोपुरम की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। प्रवेश द्वार के भीतर दाहिनी ओर भगवान गणेश की छोटी मूर्ति स्थित है, जो सभी बाधाओं को दूर करती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में देवी के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। द्वार के दोनों तरफ द्वारपालों के चित्र हैं। मुख्य द्वार को पूरी तरह चांदी से मंढा गया है। आगे बढ़ने पर गर्भगृह के सामने एक ध्वज स्तंभ, देवी के पैरों के निशान और नंदी की छोटी मूर्ति स्थित है। यहाँ का गर्भगृह अद्भुत शक्ति का स्रोत है और बहुत ही सुंदर है। गर्भगृह की चौखट, द्वार, दीवारें और देवी का सिंहासन चांदी से बना है। यहाँ स्थित देवी की प्रतिमा को शुद्ध स्वर्ण धातु से बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा के भी समुचित इंतजाम किए गए हैं। देवी चामुंडा ने साड़ी पहनी है और सोने का मुकुट और आभूषण पहने हैं। माँ का विग्रह तेजोमय है। अपने तेज से पूरे गर्भगृह को वो प्रकाशित कर रही हैं। गर्भगृह के ऊपर छोटे टावर का निर्माण किया गया है, जिसे विमान कहते हैं। मुख्य द्वार के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन समय में ये एक छोटा मंदिर था, जिसके बाद 12वीं सदी में होयसल वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर को विस्तार दिया गया। समय समय पर विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। सन 1659 में इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के 7 मंजिला गोपुरम का निर्माण भी विजयनगर के शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। सन 1827 में मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार तृतीय ने फिर से मंदिर पुनर्निर्माण करवाया और सिंह, वाहन, रथ, बहुमूल्य रत्न जेवरात और अन्य संपत्ति आदि मंदिर में अर्पित की। श्री चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ में सबसे मुख्य त्योहार नवरात्रि का त्योहार होता है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है। दोनों ही अवसरों पर मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में दुर्गा माँ के 9 रूपों को दर्शाने के लिए प्रत्येक दिन श्री चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को 9 अलग-अलग रूपों में सजाया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों से देवी का श्रृंगार किया जाता है और विशेष पूजा की जाती है। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में भी दशहरा त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैसूर में दशहरा उत्सव का प्रारंभ चामुंडेश्वरी पहाड़ियों पर विराजने वाली देवी चामुंडेश्वरी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ होता है। यहाँ पर श्रद्धालु माँ से अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए आते हैं। इस अवसर पर माँ चामुंडेश्वरी को स्वर्णिम पालकी में बैठाकर उनकी झांकी निकाली जाती है। इस अवसर पर बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहते हैं। ये दिन मैसूर वासियों के लिए भी बेहद खास होता है। देवी की पालकी के साथ साथ यहाँ पर एक भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। दशहरे के दिन मनाए जाने वाले इस उत्सव को जंबो सवारी कहा जाता है। इस दिन सबकी नजरें हाथी पर निकलने वाले सुनहरे रंग के हौदे पर टिकी होती हैं। मान्यता अनुसार पुराने जमाने में इस हौदे का उपयोग मैसूर के राजा अपनी शाही गज सवारी के लिए करते थे। हालांकि अब साल में केवल 1 बार विजयादशमी के जुलूस में इस हौदे का प्रयोग माता की सवारी के लिए किया जाता है। विजयादशमी के मौके पर मैसूर का राज दरबार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। इस अवसर पर यहाँ 10 दिनों तक बेहद धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में आषाढ़ महीने के शुक्रवार को भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी तिथि को चामुंडी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मैसूर के राजा देवी की मूर्ति अभिषेक की वर्षगांठ के उत्सव में स्वयं शामिल होते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप इन्हीं दिनों में आकर इस पवित्र स्थान के दर्शन करें। चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ आने के लिए आपको मैसूर आना होगा। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मैसूर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर रेल व सड़क मार्ग द्वारा भी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मैसूर से पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सड़क भी बनी हुई है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन नियमित बस सेवा का भी संचालन किया जाता है। अधिकतर लोग शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए मैसूर में ही रुकते हैं और अगले दिन सुबह दर्शनों के लिए निकलते हैं और रात तक दर्शन करके लौट आते हैं। मंदिर के आसपास भी रुकने की व्यवस्था उपलब्ध है। इस पहाड़ी पर ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर अन्न क्षेत्र का संचालन भी किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बाजार भी है, जहाँ पर आवश्यकता का सभी सामान मिल जाता है। तो आप जब भी मैसूर आएं, तो इस शक्तिपीठ के दर्शन करना ना भूलें। इस शक्तिपीठ के अलावा आप मैसूर पैलेस, जगमोहन पैलेस, वृंदावन गार्डन्स, रेल संग्रहालय, रेत मूर्ति कला संग्रहालय आदि स्थानों का आनंद भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन और दर्शन करेंगे देवी हर सिद्धि शक्तिपीठ के, जहां माता सती की कोहनी का निपात हुआ था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
This was an HT Smartcast original.
HT Smartcast.